अध्याय 16। मृषा न होई देव ऋषि बानी। नगवा घाट पर बैठे सुक्खू ने स्वच्छ जल से धोकर सील लोड़ा खड़ा कर दिया और उस पर नारियल की खोपड़ी से द्वितीया भाग गिराता हुआ वह चिल्लाया, लेना हो बाबा भोलेनाथ। पानी में छटक पड़ी साबुन की बट्टी खोजने के लिए उसके साथी झिंगुर ने उस समय गोता लगा रखा था, वह भी पानी के भीतर से विजया मंत्र पढ़ता हुआ बाहर निकला और मंत्र के शेष भाग की पूर्ति करता हुआ सा चिल्ला, जो विजया की निंदा करे उसे खाए कालिका माई। और फिर सुक्खू की ओर घूमकर उसने पूछा, का भाई सुक्खू, माल तैयार हो गए? मसाला तक कब्बे से तैयार हो? देखी तोहे साफा पानी से कब छुट मिल लेला? तनिक देर लगी भाई, अच्छा था तोहार हिस्सा रख के हम आपन पी जात है। झिंगुन ने सिर हिला कर स्वीकृति दी और सुक्खू ने नारियल में भांग भर कर पीने की तैयारी की। वह नारियल में मुंह लगाने ही जा रहा था कि पीछे से आवाज आई, क्या बच्चा अकेले ही अकेले? सुक्खू ने घूम कर देखा कि एक बाबा जी की भव्य मूर्ति पीछे खड़ी बत्ती सी चमकाते हुए उसकी ओर याचना की मुद्रा में देख रही थी। बाबा जी के सिर पर चोंगा नुमा अल्फी झूल रही थी, उसके एक हाथ में लकड़ी का कमंडल और दूसरे में सिंदूर चित लोहे का त्रिशूल था। सिर पर लंबे मटीले केश और नाभि तक छुलती दाढ़ी भी। उनकी इस अद्भुत मूर्ति का प्रभाव सुक्खू पर पड़ा। उसने कहा, सब आपे लोगन पर माया हो गुरुजी, आपका अस्थान कहाँ हो महाराज? साधु तो रमते राम है बेटा, उनका बध के स्थान कहाँ? बाबा कबीर दास ने कहा है, साधु बहता नीर भल, सोने सिंधु समाए, अजल होए पायर बने का गड़ी है जाए। साधु का कथन अभी समाप्ति नहीं हो पाया था कि झुंगुर ने पत्थर पर धोती पछाड़ते हुए कहा, का भाई ई काबुली कौवा कहाँ से आया? धुने काट खाऊ? मुद्रा से झिंगुर की ओर देखा वह चुप रहा। उत्तर दिया सुक्खू ने, तू कैसन बतियावत हो भाई? झिंगुर महात्मा हवन दिखलन चलैलन। साधु ने भी झिंगुर की पूरी उपेक्षा कर सुक्खू से कहा, बच्चा देरी क्यों करता है? देना ल बाबा जी कमंडल में ले ल। कमंडल में ले बका? हाँ हाँ दे दे इसी में। बाबा जी ने कमंडल आगे बढ़ाया, सुक्खू ने थोड़ी सी भांग उसमें डाल दी। बाबा जी ने एक सांस में से सोख कर अल्फी की जेब से पीतल मड़ी लंबी सी एक चीलम और गांजे की पोटली निकाली, उसमें से थोड़ा गांजा निकाल हथेली पर मलने लगे। उधर झिंगुर धोती सूखने के लिए फैलाकर वहां आया। उसने देखा कि भांग बहुत थोड़ी बची है। उसने क्रोध से मुंह विकृत करते हुए कहा, का सुक्खू तो माया जाल में फंस गई ला? सुक्खू ने उत्तर दिया, अरे भाई साधुन महात्मा के देख के तब्बे प्रसाद लेवे के चाहिए। अच्छा ढेर ज्ञान जिन छाटा, ऐसन तोता रटन साधु हम बहुत देख ले हैं। साधु का सकल ऐसने होला? बाबा जी गांजा मलकर सुल्फा सुलगा चुके थे। जल्दी जल्दी दो चार दम लगाकर उन्होंने लाल लाल आंखों से झिंगुर को घूरा। झिंगुर ने उनकी आंखों से आंखें मिलाते हुए कहा, बनर धुक्कड़ी जिन दिखावा बाबा जी, नहीं तो अच्छा ना हो, तेरा नाश हो जाएगा। बाबा जी शाप देने की मुद्रा में गुर्राए। जमान संभाल के बोला झिंगुर ने गरम होकर कहा, साधु का अपमान करता है, तेरा नाश हो जाएगा। बाबा जी ने हकलाते हुए कहा, अपने बुकले जाला, बड़का बाबा कनके आल हो, जानत नहीं कि काशी के कंकर शिवशंकर समान है, से शराब से हम नहीं डेरावत। तू क्या चीज है बे छोकड़े काप जाते हैं? सुना नहीं है कि गीता जी में क्या लिखा है, मृषा न होई देव ऋषि बानी। बहुत देख ले हैं हो, कुछ नहीं देखा है, देखना है तो देख सामने रामनगर की ओर, देख कैसा होता है साधु का श्राप। साधु की उंगली के साथ ही झिंगुर की दृष्टि गंगा पार सामने की ओर घूम गई। समूचा किला दीपावली मनाता हुआ आलोक स्नान कर रहा था। कार्तिक कृष्ण अष्टमी की संध्या थी, पश्चिम में अग्नि गोल तिरोहित हो चुका था, परंतु पूर्व में अभी स्वर्ण गोलक की रेखा भी प्रकट न हो पाई थी। कौदली समाप्त होते होते अंधकार छा गया। उस काली पृष्ठभूमि में प्रकाशोज्ज्वल किला उस चित्र के समान दिखाई पड़ रहा था जिसमें कृष्ण केशों की व्यापक सघनता में चित्रकार ने किसी सुंदरी के चंद्रमुख का आलेखन किया हो। झिंगुर की बहस की प्रवृत्ति शांत हो चुकी थी, वह मंत्र मुग्ध किले की ओर देखता रहा। बाबा जी के होठों पर भी मुस्कान की क्षण रेखा खिंच गई, जिससे उनका रूप कुछ और आदर्शनीय हो उठा। परंतु बाबा जी की इस मुस्कान पर सुक्खू की श्रद्धा और भी बढ़ गई। उसने परम विनीत स्वर से पूछा, साधु के श्राप और किला से मतलब महाराज? मतलब बहुत है बच्चा, तेरे में श्रद्धा है, मैं तुझे सारा मतलब बता देता हूँ। राजा चेसी का नाम सुना है बच्चा? हाँ बाबा जी, महाराज बरवंड सिंह का लड़का ना, खूब जानी लाई का अगवे उनकर किला हो। तू तो बहुत ज्ञानी है बेटा। हाँ तो चेसिंग की बात है, वह जब काशी नरेश रहे तो काशी में उस वक्त एक बहुत बड़े सिद्ध का निवास रहा बेटा, कह गुरु जी? सिक्खू ने हाथ जोड़कर पूछा। बाबा कीनाराम? बाबा कीनाराम? सुक्खू ने विस्मय मिश्रित स्वर से कहा। बाबा कीनाराम के के हम कुट जानी ला गुरु जी उनकर बनावल भजन हमार माई आज तक गावेला। हाँ तब महाराज का भइल तो बेटा उसी किले के नीचे राज जैसे एक दिन टहल रहे थे, उधर से रमते जोगी बाबा किन्नाराम आ निकले। राजा ने उनको देख तेरे इसी साथी की तरह अभिमान में भर कर उन्हें नमस्कार तक न किया। बाबा जी भी रुक गए। संतों को अभिमान कहाँ बेटा, जैसे मैंने अपने से आकर तुझसे याचना की वैसे ही उन्होंने राजा से कहा, राजा भूख लगी है। राजा ने घृणा भरी मुस्कान से उनकी ओर देखा और कहा ठहरो खाना मंगाता हूँ। राजा ने अपने कर्मचारी की ओर इशारा किया, वह कर्मचारी का कायस्थ बहुत चतुर, समझा ना बेटा। बेटा सुक्कू बाबा की बात बड़े भक्ति भाव से सुन रहा था, उसने मूल मूल समझा था। अस्त्र की उलझन उसकी समझ में न आई थी पर उसने सिर झुका कर कहा हाँ महाराज समझ गई। कुछ नहीं समझा बेटा, समझने की बात तो अब आगे आएगी, समझ। कर्मचारी ने हाथ जोड़कर राजा से कहा सरकार बाबा से वैर ना करो। पर सरकार ने उसकी बात नहीं मानी, कहा हम भी छन्नी बाबा भी छन्नी, लेकिन हम राजा व भिखारी, उसने हमें सलाम क्यों नहीं किया। राम राम राजा कई बुद्धि, सुखों ने विनीत निवेदन किया। हाँ बेटा यही बात है, सूरदास ने भी कहा है समझ चुकी पुनी का पछताने। सो कर्मचारी ने फिर कहा अच्छा तो फिर हमें बाबा जी के लिए भोजन लाने का हुक्म हो। राजा ने कहा हाँ जाओ ले आओ। देखो किले के उधर दोपहर कहीं से एक लाश आकर किनारे लग गई है, बहुत दुर्गंध है उसमें, उसे दुमड़ों से उठवा मंगाओ। अरे विस्मय से सिखू का मुख खुल गया और मिनट भर खुला ही रहा। बाबा जी पूर्वत मुस्कुराए और कहने लगे, तो उस कर्मचारी ने कहा सरकार सूली दे दें पर ऐसा काम मुझसे न होगा। बाबा किनाराम खड़े सब सुन रहे थे, उन्होंने कहा सदानंद यह जैसा कहता है करो, अपने वश में सदा आनंद नाम रखना, आनंद रहेगा। सदानंद ने भी तुरंत वह मूर्त उठवा मंगाया। राजा ने बाबा जी से कहा भोग लगाइए। सारे पार्षद और कर्मचारी मुंह फेर कर खड़े हो गए। राजा ने डांटा तब सब सामने देखने लगे। बाबा ने अपना दुपट्टा उतार कर मुर्दे पर डाल दिया। 5 मिनट बाद सदानंद ने कहा दुपट्टा उठाओ। सदानंद से कहा दुपट्टा उठाओ। सदानंद कांपते पैरों से आगे बढ़ा, उन्होंने कांपते हाथों से आंख मूंद कर कपड़ा उठा लिया। जयकारा सुन सब जब उन्होंने खोली तो क्या देखा, बोला देखा बोल। बाबा जी ने डपट कर सुक्खू से पूछा। सुक्खू सब पका गया, उसने सोचा कि क्या कहे, फिर ख्याल आया कि राजा की करनी पर बाबा को क्रोध आया ही होगा, सो उसने धीरे से कहा मुर्दवा अजगर बन गई हुई। थोड़ा सा चूक गया बेटा, पापा जी ने इसने सिर्फ अट्टहास करते हुए कहा, अजगर नहीं बना बेटा, पकवान बन गया पकवान। लड्डू पेड़ा बर्फी जलेबी इमरती मोहन भोग, कहते कहते बाबा जी हाँफ गए परंतु बात जारी रखी। उन्होंने कहा बाबा का चमत्कार देख राजा की आंखें खुल गईं, वह घबरा कर पैर पर गिर पड़ा परंतु बाबा ने कहा नहीं अब तुम राजा नहीं रह सकते और जानते हो तुम्हें गद्दी से कौन उतारेगा। यही सदानंद, राजा थरथरा गया बेटा बड़ी विनती की तब बाबा पसीज गए, उन्होंने कहा तुम्हें तो गद्दी से उतरना ही पड़ेगा। हाँ तेरी विनती पर मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि तेरे बाद तेरा यह राज खंडित रूप में तेरे प्रतापी पिता के वंशधरों को मिलेगा। 6 पीढ़ी तक राज्य करने के बाद तब तेरे राज्य का विलय होगा। श्रद्धा विभोर सुक्खू अभी विलय का अर्थ भी न समझ पाया था और न यह पूछ पाया था कि इससे किले की सजावट का क्या संबंध, कि झिंगू ने हंसकर कहा नशा जोड़ कैले हो का बाबा जी, और बाबा जी ने उसकी ओर फिर घूम कर देखा, झिंगुर हंसता ही रहा। जिस समय बाबा जी ने झिंगुर का ध्यान किले की सजावट को आकृष्ट किया तो कुछ देर तक झिंगुर किले की ओर देखता और विचार करता रहा कि आज किले में सजावट कैसी है। बाबा जी के अट्टहास से उसका ध्यान भंग हुआ और उसके बाद उसने बाबा जी के मुंह से जो कुछ सुना वह उसके मन में जमा नहीं, उसने कौतुक अनुभव किया और हंसने लगा। लेकिन महाराज सुक्खू ने पूछा विलय माने का, इतने में कहीं से सीटी की ध्वनि आई। बाबा जी चौंक गए, उन्होंने उड़ते उड़ते कहा इसका माने यही कि आज चेसनी का राज्य समाप्त हो रहा है, दिल्ली की सरकार यह राज्य लखनऊ की सरकार को दे रही है, समझा बेटा। और बाबा जी कदम बढ़ाकर चले, मोड़ घूमते ही उन्हें पुलिस के कुछ कर्मचारी और एक बड़े अफसर दिखाई पड़े। बाबा जी ने इधर उधर देखकर फौजी ढंग से अफसर को सलाम किया। अफसर ने कहा कहो बाबा जी तुम अपनी ड्यूटी तो बड़ी चौकसी से बजाते हो, वह तो मैंने कह दिया है हजूर, निशान न हुई देव ऋषि बानी, हजूर से क्या छिपा है। बाबा जी ने कहा इसलिए तो कहता हूँ, अफसर ने कहा मुझसे सचमुच कुछ नहीं छिपा है, तो वहाँ गांजा भांग पीकर जो कुछ बक रहे थे वह सरासर बेहूदी बात थी, कायदे के खिलाफ काम की सजा जानते हो, जब हजूर कहते तो ठीक ही होगा, निशान न हुई देव ऋषि बानी सीताराम सीताराम, बाबा जी ने जोर से कहा। उसी समय 2-3 आदमी मोड़ घूमकर आते दिखाई पड़े। अफसर भी खुर्राट जमादार की चतुराई पर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। उधर चिंगू ने बाबा की बात सुनते ही सुक्खू से सहसा पूछा का हो आज 15 तारीख ना ही ना हो, कहा जानी भाई 15 तारीख के का हो तू सुक्खू ना ही बुद्धू हुआ, चिंगू ने मुस्कुरा कर कहा। सुक्खू भी बिना को समझे ही हंसने लगा। किले की ओर बड़ी तीव्र उल्लास ध्वनि हुई, चिंगू भी उसी ओर ताकने लगा। वह एक कमरे की ओर जिसे महाराज के कमरे के नाम से जानता था एकटक निहारता खड़ा रहा। सहसा उसने देखा कि कमरे की खिड़की में कोई आकर खड़ा हो गया है। चिंगू ने निगाह जमा कर देखा, तब अपने साथी से बोला, अरे सामने महाराज हवन, हर हर महादेव कहे के चाही। लेकिन चिंगू ने कुछ सोच कर कहा, जब राजे नहीं रह गयेलन तब तो हार कपार। चिंगू ने सुख से कहा, राज नहीं रह गया तब ऊ राजा नहीं रह गयेलन का, मंदिर टूट गयल तका भगवान गायब हो गयेलन, तू चुप रहा। और स्वयं वह खिड़की की ओर मुंह उठाकर जोर से चिल्लाया, हर हर महादेव।